आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल 8 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। 4 अप्रैल है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर देना होगा निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से किया इनकार। और वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने बनाया नया रिकॉर्ड। 31 मार्च को पहुंचे 6,36,975 श्रद्धालु। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल 8 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि अमरोहा, बागपत और गौतमबुद्ध नगर में एक एक प्रत्याशी, अलीगढ़ में 2 और गाजियाबाद में 3 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। इसके साथ ही दूसरे चरण के लिए अब तक कुल 12 नामांकन दाखिल किए जा चुके हैं। अमरोहा में भाजपा से कंवर सिंह तंवर, बागपत में राष्ट्रीय लोकदल से राजकुमार सांगवान, गौतमबुद्ध नगर में समाजवादी पार्टी से महेंद्र ने कल अपना नामांकन दाखिल किया। अलीगढ़ में भाजपा से सतीश कुमार गौतम और निर्दलीय प्रत्याशी सतीश कुमार ने कल नामांकन किया। इसके अलावा गाजियाबाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस से डॉली शर्मा, सुभाषवादी भारतीय समाज पार्टी से धीरेन्द्र सिंह भदौरिया और राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी से मोनिका गौतम ने नामांकन किया। दूसरे चरण की 8 सीटों पर 4 अप्रैल तक नामांकन दाखिल हो सकेंगे। 5 अप्रैल को इन नामांकन पत्रों की जांच होगी। 8 अप्रैल नामांकन वापसी की आखिरी तारीख होगी। इन सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की 8 सीटों पर आगामी 19 अप्रैल को मतदान होगा। इनमें मुजफ्फरनगर की सीट भी शामिल है, जहां से भाजपा ने लगातार 2 बार सांसद रहे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ संजीव बालियान को तीसरी बार मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह प्रजापति मैदान में हैं। 8 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इनमें 4 विधानसभाएं मुजफ्फरनगर जनपद की बुढ़ाना, चरथावल, खतौली और मुजफ्फरनगर शामिल हैं। वहीं मेरठ जिले की एक विधानसभा क्षेत्र सरधना भी इसमें शामिल है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर मतदाताओं की संख्या 18,10,628 है। इनमें 9,65,374 मतदाता पुरुष हैं और 8,45,106 मतदाता महिलाएं हैं। लोकसभा क्षेत्र में 148 मतदाता थर्ड जेंडर के भी हैं। भाजपा ने तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में वो इस सीट से जीत हासिल कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने पूर्व सांसद हरेन मलिक को प्रत्याशी घोषित किया है। बहुजन समाज पार्टी ने दारा सिंह प्रजापति को मैदान में उतारा है। इस बार राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ आ गया है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्येक उम्मीदवार को परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करना होगा। बिना किसी ठोस कारण के निर्धारित समय सीमा में निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा दाखिल करने में असफल रहने वाले प्रत्याशी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के तहत लोकसभा या विधानसभा के प्रत्येक प्रत्याशी के लिए उसके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख तक उसके द्वारा किए गए सभी व्यय का लेखा जोखा रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान प्रत्याशी द्वारा किया गया व्यय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(3) के तहत निर्धारित राशि से अधिक नहीं होना चाहिए। वर्तमान में प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 95 लाख रूपये और प्रत्येक विधानसभा उप निर्वाचन क्षेत्र के लिए अधिकतम व्यय सीमा 40 लाख रूपये निर्धारित है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों को कहा है कि वो यथास्थिति बनाए रखें ताकि पूजा अर्चना और नमाज को अंजाम दिया जा सके। कोर्ट ने तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेन्द्र व्यास को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के तीसरे सप्ताह में होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्धजन सम्मेलनों को संबोधित किया। हाथरस में प्रबुद्धजन सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि प्रबुद्धजन समाज को नेतृत्व देते हैं, इसलिए आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने बदलते हुए नए भारत का दर्शन किया है। 2014 के बाद एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखी है। आज विकास हमारी पहचान है। बुलंदशहर में श्री योगी ने कहा कि पिछली सरकारों और बीजेपी सरकार में काफी अंतर है, जिसने सभी ने देखा है। यूपी का मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है। इन असीम संभावना वाले प्रदेश ने आज अपनी अलग पहचान बनाई है। गौतम बुद्ध नगर में श्री योगी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में लोगों ने एक बदलता हुआ भारत देखा है, जो विश्वास से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि 2017 के पहले के मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर को अभिशापित मानते थे, लेकिन आज विकास यहां की पहचान है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने भी कल विभिन्न स्थानों पर सभाएं की और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगा। तेल विपणन कंपनियों ने देशभर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। इनमें अलग अलग शहरों में 30 से 32 रुपए तक की कटौती की गई है। तीर्थ नगरी मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। जिलाधिकारी शैलेन्द्र कुमार सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि ग्लोबल मार्केट में अब ब्रज की इस कला को अलग पहचान मिलेगी, कामगारों को इसका लाभ मिलेगा। ब्रज के लिए यह गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि यह कला राधा कृष्ण के प्रेम और लीलाओं का प्रतीक है। जिस तरह से ब्रज की होली प्रसिद्ध है, उसी तरह सांझी भी ब्रज की प्राचीनतम कलाओं में अपना स्थान बना चुकी है। वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं का नया रिकॉर्ड बन गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ी संख्या को लेकर हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। यही कारण कि बीते 31 मार्च को पर्व के अलावा अन्य दिवस में अब तक की सार्वकालिक सर्वाधिक श्रद्धालु संख्या 6,36,975 दर्ज होने के साथ मार्च 2024 का माह श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के आगमन का ऐतिहासिक माह रहा। मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा के अनुसार इस माह के सापेक्ष गत वर्ष मार्च 2023 में धाम आने वाले श्रद्धालुओं की कुल संख्या 37,11,060 थी। यदि पर्व मास की संख्या देखो तो श्रावण मास में अगस्त 2023 माह में पधाने वाले श्रद्धालुओं की सार्वकालिक अधिकतम संख्या 95,62,206 थी। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह।
गर्मी को देखते हुए पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी का समय कल से बदल दिया गया है। पीटीआर के उप निदेशक मनीष सिंह ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से सुबह की सफारी का समय 6 बजे से 9:30 बजे और दूसरे शिफ्ट की सफारी का समय अपराह्न 3 बजे से शाम के 6:30 बजे तक निश्चित किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल 8 उम्मीदवारों ने दाखिल किया नामांकन। 4 अप्रैल है नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि। लोकसभा चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर देना होगा निर्वाचन व्यय का लेखा जोखा। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक लगाने से किया इनकार। और वाराणसी के श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं ने बनाया नया रिकॉर्ड। 31 मार्च को पहुंचे 6,36,975 श्रद्धालु। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।